आज जो सबक सुनाया जा रहा है, बहने और भाई यहाँ दोनों इसका ख्याल रखें। ये तकरीबन एक महीने तक रोजाना आप इस सबक के तकाजे पर अमल करने की कोशिश करें। हमेशा कोई सबक दिया जाता है तो कहते हैं कि हफ्ता भर इसका ख्याल रखें। आज कहा जा रहा है कि भाई महीना भर इसका ख्याल रखो, इसलिए कि दो तीन जुमात को आपको छुट्टी मिल सकती है। एक सफर मुतवक्के है, उसकी वजह से दो तीन जुमा मजलिस को छुट्टी रहेगी। मदरसों में तो जब छुट्टी का ऐलान होता है पूरे बच्चे खुशी के मारे उनके चेहरे खिल उठते हैं, मगर यहाँ मजलिस में चेहरे खिल उठ नहीं रहे हैं। इतना समझ में नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा खुशी छुट्टी ही होती है। देखिए यहाँ हमारा ये जो सिलसिला है मजालिस में तीन बातों को सुनाने का, ये खालिस अपनी इस्लाह, अपनी तरबियत, अपने जिंदगी में दीन आना, अपने जिंदगी में दीन लाना, अपना हराम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होना, हमारी आखिरत ठीक होना, हमारा अल्लाह हमसे राजी होना और हमारी जिंदगी में बंदगी आना, ये मंशा है इन मजालिस। ज़ाहिर है कि जब ये इतने बड़े काम के लिए इस किस्म की मजलिसें हैं तो खालिस उनके जाने से तो काम बनने वाला है नहीं। जो काम दिया जा रहा है उस काम को आदमी करता रहे तो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज के हासिल होने की तवक्को है जिसके लिए हम लोग यहाँ जमा होते हैं। मेरी जिंदगी में कुछ काम दीन के होते हैं, बहुत से काम दीन के नहीं होते। मेरी जिंदगी में बाज़े आमाल अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होते हैं, बहुत सारे काम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में बाज तरीके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होते हैं, बहुत से तरीके हुजूर की सुन्नत के खिलाफ होते हैं। तो ये जो मेरे दीन में कमी है, इस कमी को दूर करने की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए उसका एक दस्तूरुल अमल बताया जाता रहता है। इसलिए कोई नई बात सुनने को मिलेगी ये चक्कर में कभी नहीं आना, और कोई जोरदार बयान सुनने को मिलेगा इस मकसद से यहाँ तशरीफ लाने की जरूरत नहीं है। ख्वाहिश है किसी को जगह नहीं मालूम है तो पूछ सकते हैं, बता देते हैं फलानी जगह उमदा तकरीर होगी। यहाँ तो बस मेरी जिंदगी में जो दीन में कमी है वो कमी पूरी हो जाए, जो अहकाम में कोताही हो रही है वो कोताही खत्म हो, जो तरीके जिंदगी से छूट रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम के वो तरीके मेरी जिंदगी में आ जाए, जो काम ऐसे हो रहे हैं जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हैं तो उन कामों से मुतवा करके फिर वो काम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करने वाला बन जाऊं, ये मंशा है। इसीलिए इस मजलिस में आना भी चाहिए। एक ऐसा वक्त 24 घंटों में से एक ऐसा वक्त जो इत्मीनान का हो, खलल का टाइम ना हो, नो आ रहे हैं इनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनका फोन आ रहा है, इनका फोन आ रहा है, ये बच्चे सता रहे हैं, साजो सामान लाना है, ऐसा टाइम नहीं रहना, एक सुई का टाइम। और पेट की हालत कैसी रहना, कहते हैं कि ज्यादा लबरेज भी नहीं रहना, फुल तीसरे हुक्म तक खाए हुए होने की हालत नहीं रहना, और बिल्कुल खाली भी नहीं रहना कि भूख का तकाजा। ऐसे वक्त में रोजाना एक टाइम मुकर्रर करके मगरिब से इशा तक के दरमियान का, फजर के बाद का, फजर से पहले का अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर जिक्र में मशगूल होने का काम है। एकदम अकेले हो इस दरमियान में, अगर रोने को जी चाहे तो खूब बेतकल्लुफ रो ले, बारगाह इलाही अल्लाह की अजमत, अल्लाह के खौफ, अल्लाह की किबरियाई की वजह से जो आदमी को रोना आता है ना, बहुत बड़ी नेमत। हदीस में आता है कि बंदा तन्हाई में अपने अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बह पड़े तो कियामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का उसको साया अता फरमाएंगे। तन्हाई में आदमी अल्लाह को याद करे, रोना आए तो रोए, अगर उसकी आंख से आंसू बह जाए तो ये इतनी बड़ी फजीलत की चीज है कि हदीस में आता है कि कियामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे। रोने से चीज बहुत जल्दी मिलती। कल भी मोइनाबाद में एक बुजुर्ग की बात सुनाई गई थी। एक साहब किसी से कर्ज लिए, फिर उसके बाद में एक और साहब से लिए, फिर उसके बाद में एक और साहब से लिए, कई कर्जे लोगों के देने थे। वो जो साहब कर्जा लिए उनकी तबीयत खराब हो गई। खराब हुई तो ऐसी खराब हुई कि अब ठीक होते हैं या नहीं होते हैं इसकी बारे में खतरा पैदा हो गया। तो जो लोग कर्ज दिए थे वो लोग आके घेर लिया, हमारे को कर्जा देना है, हमारा कर्जा दो, हमारा कर्जा दो, हमारा कर्जा दो। इस वास्ते कि वो चले गए तो दिंगा को नहीं, हाँ भाई ठीक है देंगे, हाँ ठीक है देंगे। एक बच्चा कुछ बेचने के वास्ते आया, उसको बुलाया, बेचेगा हाँ कितने में बेचेगा, कितने में ठीक है दे दे, सबको खिला दे, सबको खिला दे, तुम भी खा लो, उन्हें भी खा लिया, खुश हो जाएगा, सामान भी बिक गया, पैसे भी पूरे मिलेंगे, खाने के भी मिल गया। उसके बाद बोला करते पैसे दे, हाँ भाई ठीक है देंगे। देव में कुछ जाके अम्मा बाबू के हिसाब देने का है, पैसे पहुंचाने का है, हाँ भाई ठीक है देंगे। दूसरा सब भी तकाजा करे कर्जा दो कर्जा दो। अब वो बच्चा रोना शुरू कर दिया, क्या बोलूंगा मैं, वहां जाके सामान भी दे दिया दूसरों को, पैसे भी नहीं लाया, क्या बोलूंगा। रोना शुरू कर दिया, रोते जा रहा, मांगते जा रहा, रोते जा रहा, मांगते जा रहा। उन्होंने दुआ मांगी कि मौला इंतजाम फरमा दीजिए, सारे लोग तकाजा कर रहे हैं। थोड़ी देर में कोई साहब आए, बहुत बड़ी मकदार में कुछ हदिया पेश किया उनको, उन्होंने उसमें से निकाल के तमाम कर्जों वालों को दे दिया, सबका कर्जा अदा कर दिया, बच्चे को भी दे दिया। उसके बाद में बोले कहते अल्लाह ताला से, अल्लाह तकाजों की तकमील में बहुत देर हो गई, इतनी देरी की मसलहत समझ में नहीं है। तो जवाब आया दिल में कि ये मांगने वाले तो बहुत थे, रोने वाला नहीं था। बोले हमारे यहाँ हयाउल्लूम में बोरवेल खोदे, एक जगह खोदे थे, पानी बराबर नहीं निकला था तो दूसरी जगह खोदे, क्या करना बोल के मदरसे के मौल साहबों को बच्चों को कमरे में बिठा दिए, नमाजा पढ़ते रहो, दुआ मांगते रहो, पानी पानी एल्ला पानी एल्ला पानी मांगते रहो। 50 फीट खोद दिए, 100 फीट खोद दिए, 150 फीट खोद दिए, पानी नहीं आ रहा। उनको बोल दिया जब तक पानी नहीं निकला तुम वहां निकलना नहीं। और उसके बाद मौल साहब फोन करके बोले मौलाना अल्लाह का शुक्र है पानी निकल गया। उसके साथ साथ ये भी बोले जब तक कि हमारे आंखों में पानी नहीं आया उस वक्त तक गोरवेल में पानी नहीं आया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हम लोगों खाली मांगने की आदत है, रोने की नहीं, अपने ख्वाहिशों को पेश करने की आदत है। आजिजी इनके सारे का मिजाज नहीं, अपने अरमानों को पूरा करने की तरफ तवज्जो है, अपनी हाजतमंदी अपनी नियाजमंदी अपनी मोहताजी इसका इंतजार नहीं होता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है कि अगर रोना ना भी आए तो रोने वालों की नकल करने से भी उस दर्जे के हासिल होने की उम्मीद है। ये मुकर्रर टाइम पे इस आजिज़ी इंकिसारी के साथ बगैर नागे के कुछ अमल करना। पहला अमल है 2 रकत नमाज नफिल तौबा की नियत से पढ़ना, फिर उसके बाद बालिग होने से लेकर अब तक के तमाम गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करना। अल्लाह बालिग होने के बाद से लेके अब तक मुझसे जो जो गुनाह हुए उन सब की मैं माफी की दरख्वास्त पेश करता हूँ। کہ آپ مجھے معاف فرما دیں اور اپنے کو خوب نالائق، ذلیل، بدکار، بدعمل، بے غیرت کہتا رہے اور یوں دعا کرے کہ اے میرے رب، اگرچہ میرے گناہوں کی حد نہیں لیکن آپ کی رحمت میرے گناہوں سے بہت وسیع ہے، بس اپنی وسیع رحمت کے صدقے میرے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ پہلا عمل سمجھ میں آیا، روزانہ کرنا بلا نظر۔ مختلف بزرگوں نے مقداریں الگ الگ بیان کی ہیں، یہاں آپ کو جو مقدار بتائی جاتی ہے اس مقدار کے فرق کے ساتھ یہاں عبارت سنائی جا رہی ہے۔ پھر 200 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے۔ جس بزرگ کی یہ کتاب انہوں نے 500 مرتبہ لکھا ہے، اس خیال کے ساتھ کہ لا الہ سے دل کو اللہ کے غیر سے چاک کر رہا ہوں، دل کو، دل کے اندر سے دل کو چیر کر اللہ کے غیر کو نکالوں، اور اللہ سے اللہ کی محبت دل میں راسخ کر رہا ہوں۔ لا الہ کہتے وقت میں تصور رہے کہ جو بھی اللہ کے غیر کی محبت ہے اور جو بھی اللہ کا غیر میرے دل میں بسا ہوا ہے اس کو میں اپنے دل سے نکال رہا ہوں۔ اللہ کہتے وقت میں یہ تصور کرے کہ اللہ کی محبت دل میں مضبوط راسخ کر رہا ہوں۔ دوسرا عمل ہو گیا، کسی وقت 1000 مرتبہ اللہ اللہ کر لیا کریں۔ اس ذکر کو اسم ذات کہتے ہیں، ذکر اسم ذات۔ جب اللہ زبان سے کہیں تو تصور کریں کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل کے مقام سے بھی اللہ نکل رہا ہے، تو نہایت محبت، درد بھرے دل سے اللہ کا نام لیا جائے۔ رومی کے ایک شعر کا ترجمہ یہاں کرتے ہوئے لکھتے ہیں، عام لوگ اللہ تعالی کا پاک نام ہر دم لیتے ہیں لیکن یہ اثر نہیں کرتا ہے جب تک کہ محبت بھرے انداز میں ذکر نہ کیا جائے۔ یعنی محبت اور دل کی گہرائی سے نام پاک لینے سے کچھ اور ہی اثر ہوتا ہے۔ تو اپن شیخ بولے ہیں مجھے زبردستی کر رہی، مقدار پوری کروں گا، نہیں، محبت سے، دل کی گہرائی سے تیرا نام جب لیتا ہوں میں، دل کی گہرائی سے تیرا نام جب لیتا ہوں میں، چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات، کائنات کی بہار چومتی۔ 3 کام ہو گئے۔ پہلا کام صلاۃ التوبہ، پورے گناہوں سے معافی، اور اس کی تفصیل توبہ کی بہت دفعہ سامنے آ چکی ہے۔ جس گناہ سے توبہ کرے آئندہ کرنے کا ارادہ رہتا اس میں، یا چھوڑنے کا رہتا؟ چھوڑنے کا رہتا۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم نے توبہ کر لی تو پھر دوبارہ کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جیسے فلم دیکھنے کا ایک عمل تھا، گناہ ہوا تھا، اس سے توبہ کرے پھر دیکھیں گے کیا، جھوٹ بولنے کی عادت تھی اس سے توبہ کرے تو پھر آئندہ جھوٹ بولیں گے، غیبت کرنے کی عادت تھی اس سے توبہ کر لی پھر غیبت کریں گے، کم ناپنے کم تول کر کاروبار کرنے کی عادت تھی اب اس سے توبہ کر لی تو اس سے بچیں گے نا۔ سننے کو بہت آسانی سے سن لیتے ہیں اور دل کو بھی بہت بھلا لگتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو آدمی اسے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، سننے کو بہت بھلا لگتا ہے نا، کہنے میں بہت آسان ہے، کہے کو محبوب بنا لیتے ہیں، اس واسطے کہ اس نے گویا اپنی ماں باپ کی زندگی کو صحیح گزارنے کا قطعی پکا فیصلہ کر لیا، توبہ تو اس کا نام ہے۔ तो क्या क्या गुनाह मैं कर रहा हूँ उसके वास्ते मुहासबा है जो आपको बताया गया है। सुबह से लेकर शाम तक देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है, किसी पे जुल्म तो नहीं हो रहा, किसी का हक तो नहीं मार रहे, किसी का माल तो नहीं दबा दे रहे, किसी को खाम खा तकलीफ तो नहीं पहुंचा दे रहे। मुआशरती खराबियों में दो खराबियों से बहुत बिगाड़ पैदा होता है घरेलू जिंदगी में, और बहुत बड़ा गुनाह है वो। एक का नाम है बदगुमानी, दूसरे का नाम है बदजबानी। घरों में ये दो चीजों से खास तौर से बचना, बदगुमानी से बदजबानी से। दूसरे के बारे में खराब गुमान करना या रखना बदगुमानी है। एक साहबा की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर बोल गया ऐसा टाइट बन के रखना चाहिए इनको, मोड़ेंगे करेंगे पाँव तो सही नहीं होता, देखो बन दिए तो जरा तकलीफ हुई, खोलो 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 खोल के किसी को बोल दिए ऐसा बन लो दिए अच्छा रहता है। असल में तुम लोग मेरे को मारना चाह रहे हैं, ये बदगुमानी है नेकुमानी है। वो तो बेचारा खैर खाई में हमदर्दी में ये काम कर रहा है, और हम उसके बारे में हम ये जहन में रखे हुए कि ये तर्ज में ले लूंगा इस बात से कर रहे हैं कि इन्हें जल्दी चले जाओ, बदगुमानी है ना, बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी वजह से बहुत घरों में खराबियां पैदा होती, चीजों के बारे में बदगुमानी, पैसों के बारे में बदगुमानी, सुलूक के बारे में बदगुमानी। बच्चा बाहर गया सुन, बड़ी मुश्किल से मुलाजिमत मिली, और इतला दे दिया मुलाजिमत मिल गई, मगर वो कंपनी वाले जिसके पास काम कर रहा होगा टाइम पे पैसे नहीं दे रहे, नतीजे में बच्चा पैसा भी जाया। अम्मा बाबा करें बच्चा पैसा भी जाया नहीं, तो क्या बादाम होते हैं। असल में उधर वो ससुराल को भेज रहा हूँ ना, बदगुमानी है ना, मिले नहीं पैसे उनको कहाँ से भेजेंगे, बदगुमानी। उसकी वजह से नफरतें पैदा होती हैं, अब इनके साथ बुरा सुलूक, उनके साथ बुरा सुलूक। हालात जो आते रहते हैं उसकी रोशनी में सुना रहा हूँ मैं कि कैसी कैसी बदगुमानियां होते रहते लोगों। अब जाहिर है कि वो खैर खाही कर रहा है, ये समझ रहे ये बदखाही कर रहे हैं, वो ये समझते कि पैसा हमारे पास भेजा ही नहीं, हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, और बीवी के बारे में अलग किस्म का तासुर घर में शुरू हो जाता है, उन्हें अजीब किस्म का तासुर लेना शुरू कर देती। इसकी वजह से फंसा बिगाड़ उलझन परेशानी टेंशन खिंचाव तबीयत में शुरू हो जाती। हमारे हजरत मसीह उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, किसी से नेक गुमान रखने पर अल्लाह ताला तुमसे नहीं पूछेंगे कि तुमने फलाने बंदे से नेक गुमान क्यों रखा था, नहीं पूछेंगे। हाँ अगर तुमने किसी से बदगुमानी की तो अल्लाह ताला पूछेंगे कि तुमने मेरे फलाने बंदे से बदगुमानी क्यों की थी। देर हो गई मियां को आने में ऑफिस, बदगुमानी शुरू, आ गए कि दूसरा घर है कि क्या है कि बदगुमानी, लड़ाइयां झगड़े पंचर। तो समझ में आ गया होगा कि बदगुमानी कैसा फैलती रहती है मुआशरे में माहौल में। समझ में आने के बाद एक दो तीन मिसालें दिया मैं आपको, और बहुत सी सैकड़ों चीजा है मगर कहा सुनाना वो सब। समझने के वास्ते इशारा काफी है, अलाकिल तकफील इशारा, आकिल को समझदार को इशारा काफी होता है। तो जो जो गुनाह कर रहे थे उनमें एक है बदगुमानी उससे भी तौबा, एक है बदजबानी उससे भी तौबा, बदनिगाही उससे भी तौबा, बदअमली उससे भी तौबा, बद अखलाकी उससे भी तौबा, बद मुआमलती उससे भी तौबा, बद मुआशरती उससे भी तौबा। سب سے دعا کرنا. دوسرا عمل ہے لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ اس تصور سے کرنا ذکر کہ لا الہ کے ذریعے سے اللہ کے غیر کو دل سے نکال کر الا اللہ کے ذریعے سے اللہ کی محبت کو دل میں راسخ کرنے کا تصور. اس لیے کہ یہ مطلوب ہے اللہ کی محبت سب سے زیادہ غالب ہو جائے. تیسرے کسی وقت اللہ اللہ کا ذکر کریں اس تصور کے ساتھ کہ جیسے میرے زبان سے یہ اللہ کا پیارا نام نکل رہا ہے ایسے ہی میرے دل سے بھی دل کی جگہ سے بھی یہ لفظ ادا ہو رہا ہے اور یہ جو نام لیں خوب درد بھرے انداز میں محبت کے ساتھ میں. چوتھا کام ایک مہینے کے بعد سے مل رہا نا سبق یاد رکھنا. اچھا پھر یہ مراقبہ کرے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں اور دل ہی دل میں حق تعالی سے یوں باتیں کرے, دل ہی دل میں اللہ کی طرح متوجہ ہو کر یوں بولے اے اللہ جس وقت میں بد نگاہی کر رہا تھا یا جس وقت گناہ کر رہا تھا اس وقت آپ کی زبردست قدرت بھی مجھے اس جرم کی حالت میں دیکھ رہی تھی, اسی وقت اگر آپ کا حکم ہو جاتا کہ اے زمین شق ہو کر اس نالائق کو نگل جا یا اسی وقت کسی دردناک بیماری میں مبتلا کر دیتے تو میرا کیا حال ہوتا, مگر آپ کا کرم آپ کا علم کہ مجھ سے بدلہ نہیں لیا. اسی طرح تصور کرتا رہے کہ حق تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں اور میں اس محبوب حقیقی کے سامنے بیٹھا ہوں, استغفار کرتا رہے دعا کرتا رہے اے اللہ اس تصور کو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے دل میں جمع دیجیے. پھر ان عبارتوں کو غور سے پڑھے جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات سے ماخوذ ہیں, جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کے پاس بد نگاہی کے جائز ہونے کا کوئی سہارا نہیں, بد نگاہی کے جائز ہونے کا کوئی سہارا کوئی ہیلا نہیں ہے, بلکہ بد نگاہی ہر طرح سے حرام اور بڑا بھاری گناہ ہے. اور یہ کہے کہ اللہ اس حرام اور بھاری گناہ کا پہاڑ میرے سر پر ہے اور ایک عمر اس میں تباہ ہوئی, میری اس تباہ شدہ عمر پر رحم فرما دیجئے, آپ ارحم الراحمین ہیں, آپ کے سوا ہمارے اوپر کوئی دوسرا رحم کرنے والا نہیں. جیسے بدنگاہی حرام ہے اسی طرح خراب چیزوں کا سوچنا بھی حرام ہے, اس کا ضرر بدنگاہی سے بھی زیادہ ہے, بدنگاہی سے نیک اعمال کا نور سلب ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کا خاتمہ بدنگاہی کی نحوست سے کفر پر ہوا, یعنی عشق مجازی میں مبتلا ہو کر آخری سانس تک چھٹکارا نہیں پا سکے اور کلمے کے بجائے منہ سے کچھ اور نکل گیا. جب کوئی غیر محرم عورت سامنے آئے تو نگاہ کو نیچی کر لے, ہرگز ادھر ادھر گوشے چشم سے بھی نہ دیکھے, اگرچہ شیطان ڈرائے کہ نہ دیکھے گا تو دم نکل جائے گا, دم نکلنے کی پرواہ نہ کرے اور یوں سوچے کہ مر بھی گیا تو کیا ہی عمدہ موت ہوگی, اللہ کے حکم پر موت آئی یعنی شہادت. بدنگاہی کے بعد دل میں ایسی ظلمت پیدا ہوتی ہے کہ ذکر وغیرہ میں بے کیفی ہو جاتی ہے, ذکر میں کیف میرے بار بار تقاضے کے باوجود جب تک حفاظت نظر نہ کی جائے اور خوب استغفار نہ کیا جائے اس وقت تک دل صاف نہیں ہوتا, کبھی ذکر و شغل سے وحشت ہونے لگتی ہے, پھر یہ وحشت نفرت سے بدل جاتی ہے اور کفر تک پہنچا دیتی ہے. اللہ ہی ہم سب کو محفوظ ہو. اگر حق تعالیٰ سامنے کھڑا کر کے اتنا دریافت فرما لیں کہ تو نے ہمیں چھوڑ کر غیروں پر کیوں نظر کی, बतलाइए क्या जवाब दो। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए, अल्लाह के हुक्म पर नजर रखना चाहिए। और एक तदबीर यह है कि जब दिल में बुरा ख्याल आए या बदनिगाही की हरकत हो जाए तो फौरन वजू करो, दो रकत नमाज तौबा पढ़ो। पहले दिन तो बहुत सी नफलें पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद जब नफ्स देखेगा कि जरा मजा लेने पर यह मुसीबत हुई है तो फिर ऐसे वसवसे नहीं आएंगे। बदनिगाही होंगी तो नफलों पर नफलें जरा ज्यादा पढ़ लो, नफ्स बोलेगा कि ये गलती करवाया था, इतनी इबादत करा, मतलब वसवसे कम डालना शुरू कर दे। गरज जिस्म के हर उज्व के गुनाह को याद करके सच्ची तौबा करे और यूं कहे कि अल्लाह आप अपने करम से मुझसे राजी और खुश हो जाइए और मुझे अपनी रजा अता फरमा दीजिए, कि ए अल्लाह वो कभी आपके इताब से तब्दील ना हो, हमेशा हमेशा के लिए मुझसे राजी हो जाए। और भी बहुत सारी तालीमात हैं, एक तालीम और वो ये है कि आदमी अपनी मौत को भी याद करे। ये सोचे बैठ कर के सब मुझसे छूट जाएंगे, जिस मकान को अपना समझते थे और जिन लोगों को अपना समझते थे, मौत आते ही उसी मकान से निकाल देंगे और अपने निकाल देंगे, सोचना बैठ के। अब रूह के अंदर अगर अब रूह तन्हा रह गई, अब रूह के अंदर अगर इबादात की लज्जात हैं, अनवार हैं, तो यही काम आएंगे, वरना सब ऐश ख्वाब हो जाएगा। जितना ऐश आराम लज्जतें सामान ये सब थे, गोया ख्वाब में देखी हुई चीजें हो जाएंगी। नफ्स को यूं कहकर डराइए, ये शेर भी सब याद रख सकते हैं, छोटा सा है, लुत्फ दुनिया के हैं कई दिन के लिए। कह बोले तो कितने, लुत्फ दुनिया के हैं कई दिन के लिए, खो ना जन्नत के मजे इनके लिए। दुनिया का मजा क्या है जन्नत के मजे के मुकाबले में, वो बड़ी चीज छोड़ के ये छोटी चीज को कह को अख्तियार कर रहा है, अगर ये करेगा तो बड़ी चीज से महरूम हो जाए। ये किया है दिल तो बस फिर यूं समझ, अगर ऐसा किया कि दुनिया की ऐश में दुनिया की लज्जतों में ऐसा घिरा कि जन्नत से महरूमी वाले कामों में लग गया, तो कहते हैं ये किया है दिल तो बस फिर यूं समझ, तूने नादा गुल दिए तिन के लिए। गुल बोले तो फूल, तिन का और काढ़ी घास का टुकड़ा उर्जा, मर्दों के लिए एक और भी चीज है, कहते हैं अगर हो सके तो कभी कभी कब्रिस्तान में हाजिरी दे और ये सोचे कि ये लोग भी कभी हमारी तरह जमीन पर चलते थे, आज अफसाना हो गए। ये आलम ऐशो इशरत का, ये हालत कैफ़ो मस्ती की, बुलंद अपना तखय्युल कर, ये सब बातें हैं पस्ती की। जहां दर असल वीराना है, गो सूरत है बस्ती की, बस इतनी सी हकीकत है फरेब ख्वाब हस्ती की, कि आंखें बंद हों और आदमी अफसाना हो जाए। ये तीन चार अमाल आपको बताए गए हैं, इसकी पाबंदी करना है। दो रकत नमाज सलात तौबा, थोड़ी देर जिक्र, थोड़ी देर मुराकबा अपने गुनाहों से मुतालिक इस तसव्वुर के साथ कि अगर परवरदिगार आलम उसी वक्त में मुझसे मेरी पकड़ फरमाते तो मेरा क्या होता। वो कादिर मुतलक थे, जो चाहे कर सकते थे, उन्होंने नहीं पकड़ा अपने करम से अपने फजल से। इस इनाम में, इस एहसान में, इस करम फरमाई में, इस नवाजिश में मेरी जिम्मेदारी है कि अब मैं कम अज कम बाज आ जाऊँ, आइंदा जिंदगी को अच्छी करूँ, और उसी के साथ साथ मजीद ये लज्जतों ख्वाहिशों से दिल को हटाने के लिए अपनी मौत को याद रखने का एहतमाम करना चाहिए। इसकी वजह से लज्जतों का शौक खत्म हो जाता, किसी आदमी की तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर बोल दें अब कोई सूरत नहीं है बचने की, हकीमा बोल दें नहीं अब तो कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, आहिस्ता आहिस्ता नब्ज डूबना शुरू हो गई। वैसे वक्त में बड़ी मकदार पैसों की दे आपकी खिदमत में आ दिया है, क्या बोलता हूँ क्या करूँ, मैं मजेदार चीज बना के ला के बोला है, जी भर के थोड़ा खा लो, क्या करूँ खा के, उमदा किस्म का लिबास लेके आए, जरा इसको से बेतन कर लो, क्या बोलेगा क्या करोगे, बाकी रहती रगबत सब खत्म है, मौत सर पे खड़ी था मदर, मजे उजे सब चले। बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है, एक डॉक्टर किसी सूरत में पतला ही दुबला ही नहीं हो रहा था, दवाइयां खिला दिए, रफा पिला दिए, हर किस्म का इलाज मुआलजा हो गया, उन्हें बोल दिया था कोई इलाज करा तो है, कोई है तभी माहिर तो उसको बुलाओ, एक से एक बड़ को बुलाए, किसी से फायदा नहीं हुआ। तो एक हकीम आके बोला कहते मैं करता हूँ बादशाह सलामत का इलाज। अच्छा ठीक है, नब्ज देख के बादशाह सलामत जान बख्शी, एक गुजारिश कर रहा हूँ मैं, वही है कि आपकी नब्ज बतला रही कि बस आप सिर्फ 40 दिन के मेहमान हैं, बस गलत हो जाए तो मुझे आप जो चाहें सजा दे दें। डॉक्टर बादशाह के बारे में ऐसा बोलता है जेल में डाल दो, जेल में डाल, ठीक है जो चाहे सजा दे दी। अब उन्होंने बोल दिया था वो पक्की बात, हो गया है काम आपका, सिर्फ 40 दिन का मसला है। एक दिन गया, दो दिन गया, वो खाने की ख्वाहिश गई, पीने की ख्वाहिश गई, पहनने की ख्वाहिश गई, खाना चाह रहा भी तो जरूरत पर खाया नहीं जा रहा। 20 दिन गुजर गए तो और मंजिल करीब आ गई, 30 दिन गुजरे तो और मंजिल करीब आ गई, दिन ब दिन कैफियत खराब ही होते जा रही। 40 दिन तक मोटा ताजा था, सदुबला हो गया मगर मरा नहीं। वो माला आपको बुला के लो, कैसा बोला हम 40 दिन में मरेंगे, तो हकीम आगे बोला जाते आपका इख्तियार है, जो चाहे आप मुझे सजा दे, लेकिन चूंकि तमाम किस्म की दवाएं गोलियां आजमाई जा चुकी थी आपके इलाज के लिए, कोई दवा कारगर नहीं हो रही थी, तो मेरा जमीर कह रहा था कि यही दवा आपके लिए कारगर हो सकती है। मौत के याद रहने पर आदमी के अंदरून से ये दुनिया की रगबतें, चाहतें, ख्वाहिशें, लज्जतें खत्म हो जाती, फिर आदमी को अल्लाह को राजी करने वाले अमाल में लगना आसान होता। इसलिए भाई ये चंद चीज़ों का खसूसियत से आप इस छुट्टी वाले ज़माने में एहतमाम कीजिए। दूसरी गुजारिश मुख्तसर से भाइयों बहनों से करने की यह है कि देखो इस वक्त में इम्तिहानात वगैरह का मामला है, फिर गर्माई तातीलात का मसला है, इसमें आप एहतमाम कीजिए इस बात का कि ख़ुद भी जो अपने को ज़रूरी चीज़ें नहीं आती हैं वो उलमा को हुफ्फाज़ को पकड़ कर सीख, और ख़ास तौर से जो बच्चे अपने स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं और उनको दीन क्या चीज़ है नहीं मालूम, इस्लाम क्या चीज़ है नहीं मालूम, कुरान कैसे पढ़ा जाता है नहीं मालूम, नमाज उनको नहीं आती, आखिरत की बातें कभी उनके सामने नहीं आती, नबी अलैहिस्सलाम का कोई तारुफ उनके सामने नहीं आता, नबी अलैहिस्सलाम वाले तरीक़ों की अहमियत उनको समझ में नहीं आती। ये छुट्टियों वाले ज़माने में ऐसी तरतीब बनाइए कि आप अपने बच्चों को अपने बच्चियों को ऐसे माहौल में रखिए जिसमें उनको ये ज़रूरी दीन की बातें मालूम हो जाए, वो कुछ दीन भी सीख लें। अगर बच्चे बच्चियां दीन सीखेंगे तो अपने काम के रहेंगे, और अगर दीन नहीं सीखेंगे तो फिर ऐसी सूरत में बच्चे अपने माँ बाप के आखिरत में तो काम के रहेंगे ही नहीं, मुसीबत बन जाएंगे, दुनिया में भी मुसीबत बन रहे हैं, लाखों बन चुके। इनके औकात की हिफाजत कीजिए और इनको कुछ सिखाइए। और तीसरी चीज, इन छुट्टियों में इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि बच्चों और बच्चियों का जो माहौल है छुट्टियों से इस्तेफादा करने का, उसमें इनको आज़ाद मत छोड़ दीजिए, इनकी भरपूर निगरानी हो, खराब माहौल में इनको न भेजिए, न बच्चों को न बच्चियों को। समझा कर बुझा कर ऐसे काम में इनको लगाएगी। खेल तमाशे जो लोग करने में मशगूल रहते हैं ना, ये लोग ज्यादा तरक्की नहीं करते। और जो बहुत ज्यादा आला किस्म की तालीम पाने वाले लोग होते हैं, आप देखेंगे वो लोगों खेलों के मैदान में नहीं दिखते कहीं। जो टॉप की तालीम वाले घराने हैं पूरी दुनिया में इस वक्त में, वो खेल तमाशों में आपको नहीं मिलेंगे वो बच्चे। वो तो लोगों ने ये लोगों का पीछे ही रहना, बहुत आगे नहीं बढ़ना, बल्कि खेलों में लगा दिया बस। कभी फुटबॉल में, कभी क्रिकेट में, कभी कबड्डी में, और कभी वो मुड़े हुए डंडे और बाल को लेके भागने में, क्या बोलते हैं उसे, हॉकी, कभी वो वॉलीबॉल, कभी फुटबॉल, कभी हॉकी, कभी क्रिकेट, कहीं वो जंपिंग का मसला है, कभी रनिंग का है, कभी शूटिंग का है, पता नहीं अजीब अजीब किस्म के खेलों में लगा दिया। जीत गए तो जरा पैसे जेब भर पेट भर के दे दे रहे हैं, तो लोगों समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा मशाला है। जो मशगूल होते हैं मशगूल होते हैं, हमारे जिम्मे तो बहुत बड़ा मकसद है ना, हमको तो बड़ा काम करना है, तो ऐसी जरूरत में हम ये खेलों में क्यों लगाए। जो वक्त मिल गया इसमें कम से कम बुनियादी दीन की चीजें सीखो, अपनी औलाद को सिखाओ, इनको खराब माहौल से बचाओ, वरना बच्चों के अखलाक इतने बिगड़ रहे हैं कि बोलना मुश्किल है, और बच्चियों के हालात इतने खराब हो रहे हैं कि बयान नहीं किए जा सकते। तातीलात में इन चीजों का खसूसियत से एहतमाम कीजिए। जैसे उनकी कामयाबी की फिक्र करते हैं आप लोग, चिट्ठियां शुरू हो जाते हैं इम्तिहान शुरू होने से पहले ही मस्जिदों में इमामों के, नहीं साहब वो बच्चों के इम्तिहान आते हैं, जरा कामयाबी के वास्ते दुआ कीजिए। जैसे उनकी कामयाबी की फिक्र होती है, होना चाहिए, कोई हरज नहीं कि बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, अच्छा काबिल बने, जनाब कामयाब हो, उसका रैंक अच्छा आए, उसकी पोजीशन ठीक हो, ये ख्वाहिश माँ बाप की खराब ख्वाहिश नहीं, अच्छी ख्वाहिश है। लेकिन इससे भी ज्यादा हम जो दूसरी चीज है उसकी फिक्र क्यों नहीं। असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है ना, जो यहाँ की जिंदगी, वहां की जिंदगी के वास्ते कुछ नहीं है, तब खाली यहाँ की जिंदगी के वास्ते लेके क्या करते हैं। हाँ की जिंदगी अच्छी करने के साथ यहाँ अच्छे रहो, ठीक है, इस्लाम मना नहीं करता। 1,000-2,000 का कोई सामान है नीचे गड़े में गिरा हुआ है, गहरे कुएं में गिरा हुआ है, 1-2,000 का सामान है, उसके साथ साथ देव बोल रहे हैं उसमें अजदा भी बैठा हुआ है। जब वो 2,000 का सामान लेने के वास्ते जाना या नहीं जाना, 2,000 का क्या मसला है मौल साहब, सामान बड़को जान बड़को बोलते ना लोग, नहीं बोलते, जान सलामत जहान सलामत, ऐसे 2,000 नहीं, ऐसे कई 2,000 कमा ले सकते हैं मौल साहब, जान सही रही तो बोलना सही है अपनी जगह। सामान छोड़ना या जान छोड़ना, दोनों में से किसको अहमियत देंगे, सामान छोड़ने को अहमियत देंगे। अब उसके बाद मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जान छोड़ना या ईमान छोड़ना, दोनों में तकाबुल गुस्सा है, जान छोड़ देना, ईमान छोड़ सकते हैं। माँ बाप को फिक्र होनी चाहिए कि हमारे बच्चों की क्या सूरत हाल है, दीन से कितने बेजार हो रहे हैं, अल्लाह से कितना मुंह मोड़ रहे हैं, आखिरत से कैसे बेखबर हैं, रसूलुल्लाह से रिश्ता तोड़ लिया, उनकी जिंदगी, उनकी पूरी जिंदगी में उनकी मुखालफत करते हुए कोई एहसास पैदा नहीं हो रहा। आखिरत की हमेशा की जिंदगी जो तबाह हो रही है, इसके बारे में माँ बाप को फिक्र करनी चाहिए ना। नहीं मौल साहब बोलते सुनते नहीं, ठीक है आप बोलते रहिए, समझाते रहिए, रो रो के दुआएं कीजिए, माँ बाप के हक में दुआ कबूल होती है अल्लाह की बारगाह में, बच्चों के हक में की जाने वाली। जो अपने जिम्मे कोशिश है अपन तो वो करना ना, और शुरू से इसका ख्याल रखना चाहिए, तो ज्यादा बिगड़ने से पहले से कंट्रोल करते गए तो ज्यादा नहीं बिगड़ते, बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाने के बाद हम कंट्रोल करने गए तो मुश्किल हो जाती। तो शुरू से बच्चों के बारे में, खास तौर से बच्चियों के बारे में खसूसियत से बहुत ज्यादा फिकर माँ बाप को रखनी चाहिए। बस आज इतना ही, हम तारा जल्ले शानो से इल्म अमल की सबको तौफीक दे। अल्लाहु रब्बना लकल हम्द कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، ربنا اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم أعنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. یہ دو تین جماعت چھٹی رہے گی. ایک اعلان سن لیجیے.